शुरू करें। तो आप लोगों ने कभी ये चीज़ रियलाइज़ की है? ये मैटर नहीं करता है यहाँ पे, ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि आप लोग किस धर्म से बिलोंग करते हो। मैटर यहाँ ये कर रहा है कि आप जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को पूजते हो, उनकी पूजा करने के लिए या उनकी दर्शन करने के लिए या उनकी एक झलक तक पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार। हाँ, आप सबको ये बात पता है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमें तैयार रहना पड़ता है, हमें ईमानदारी से सारी चीज़ें, सारे कार्यक्रम पूरे करने होते हैं, सारी सामग्रियाँ लानी पड़ती हैं, तैयार रहना पड़ता है और मन साफ रखना पड़ता है, तभी जाके या आप उनके दर्शन कर सकते हो या उन्हें पूज सकते हो। उसी प्रकार से जो चीज़ें आपने वहाँ इम्प्लीमेंट की उनके दर्शन करने में, तो भगवान हमें खुद ये चीज़ इशारा दे रही है कि तुम बिना मेहनत के मेरी पूजा तक नहीं कर सकते हो, मेरी एक झलक तक नहीं पा सकते हो जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। वही चीज़ हमारे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जब आप कोई चीज़ परस्यू कर रहे हो, कोई आप जॉब कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, अगर सफलता की दर्शन करने हैं, सफलता की झलक पानी है, तो उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए अपना मन साफ करना होगा, उसके लिए हर एक एक मटेरियल चाहिए जो चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, मन आपका साफ होना चाहिए। तो भगवान खुद हमें ये चीज़ इशारा दे रही है, लेकिन हम नहीं करते हैं। भगवान की पूजा करने के लिए तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब सफलता आएगी तो उसी भगवान के पास आप कंप्लेन करने जाएंगे कि भगवान मुझे ये कर दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। तो आप भगवान के सामने जितने ईमानदार हो के आप जो चीज़ मांग रहे हो वो भगवान आपको देगा कहाँ से, जब तक आप भगवान तक पहुँचने के लिए तो बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए आप उस तक पहुँचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से होगा? इट डजेंट मेक सेंस। सो मेहनत करो यार। जब भगवान खुद हमें इशारा दे रही है कि तुम मेरे तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत करके आए हो, लेकिन जो चीज़ तुम्हें लाइफ में सही में चाहिए, खुशियाँ चाहिए, परिवार चाहिए, जो चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत तुमने मेरे तक पहुँचने के लिए की है। हजारों लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आ पाए हो क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत की थी। उसी प्रकार तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी, भगवान का यही लॉजिक होगा। आई मीन आई एम नॉट अ गॉड बट स्टिल इट्स जस्ट माई साइकोलॉजी। सो वेल, कहानी पे ध्यान दे। तो वे परिवार का सफ़र बड़ा ही सुहाना था और ऋषिकेश से रामपुर की दूरी बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही अद्भुत तरीके से उन्होंने तय की और रामपुर पहुंच के उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि सवेरे ही वो लोग रामपुर पहुंच चुके थे और अब रामपुर से सोनप्रयाग की दूरी 9 किलोमीटर थी। तो उन्होंने सोचा कि जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचते हैं, कोई रिस्क ना ले। तो वे लोग दोपहर होते होते सोनप्रयाग ही पहुंच चुके थे और सोनप्रयाग से फिर उन्हें एक टैक्सी लेनी पड़ती गौरीकुंड पहुंचने के लिए। फिर उन्होंने एक टैक्सी ली और फिर वहां से वे लोग गौरीकुंड पहुंचे। शाम होते होते वे लोग गौरीकुंड पहुंच चुके थे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहां का जो वो टूर गाइड था, उन्होंने उन्हें समझाया कि जितने भी तीर्थयात्री हैं उन्हें ट्रैवल करने से पहले, उन्हें ट्रैक पे जाने से पहले अपनी फिजिकल टेस्ट करानी होगी, मेडिकल टेस्ट करानी होगी। तो अब वे लोग तीन ही लोग थे, तो सबसे पहले उनका बेटा गया, उसके बाद उसकी माँ गई और उसके बाद फिर उनके पिताजी गए और तीनों मेडिकल टेस्ट में बहुत अच्छे से पॉजिटिवली पास हो गए। अब सफ़र बड़ा लंबा था। उसके बेटे ने उसके पापा से पूछा कि पापा, हम लोग ट्रैकिंग करके क्यों जा रहे हैं? पोनी ले लेते हैं या पालकी ले लेते हैं? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो उसके पिताजी ने वही चीज़ उन्हें उसे समझाई कि हम लोग इतनी मेहनत करके इतनी दूर आए हैं, पालकी पे बैठ के उनकी दर्शन करने के लिए नहीं, मेहनत करके उनके उनके दर्शन करने के लिए, उन तक पहुँचने के लिए, तब तुम्हें वो असली असली ईमान महसूस होगा कि हाँ मैंने मेहनत करके वहाँ तक पहुँची है। वो एक्साइटमेंट, वो जेस्ट फील होगा तुम्हें। तो कहा कि पापा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं बहुत थक जाऊँगा। बेटा भी सही था। तो बोलता है कि थक जाओगे तो थक जाओ, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे पालकी पूरी। तो गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जो नियम थे वो बड़े ही स्ट्रिक्ट थे और बड़े ही फेयर थे। 4 बजे सवेर से लेके सुबह से लेके आप लोग 1 बजे दोपहर तक केदारनाथ के लिए निकल सकते थे, ये टाइम एकदम फिक्स था। क्योंकि केदारनाथ जो है वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बसता था, और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं था कि ज़्यादा टाइम तक या किसी भी समय तीर्थ यात्रियों का निकलना, इसलिए एक टाइम स्पेसिफिकली फिक्स किया हुआ था। तो उन्होंने तय किया कि ठीक है हम लोग सुबह के 5 बजे निकलेंगे। सब तैयार हुए और बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ, और शिव जी के दर्शन करने के लिए सब में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी, और प्रकृति का सुहाना और खूबसूरती जो हम लोग शहर में रह के नहीं देख सकते हैं, वो चीज़ वहाँ देखने के लिए बहुत ही कम लोग जा पाते हैं और बहुत ही कम लोगों को अवसर मिलता है। 5 बजे सवेरे उन्होंने गौरीकुंड से जंगल चट्टी के लिए सफ़र शुरू किया। बीच में एक ब्रिज था, रामबाड़ा ब्रिज। तो गौरीकुंड से जंगल चट्टी के लिए ट्रैकिंग जो है वो 4 किलोमीटर की थी। तो शुरू के 4 किलोमीटर तो बड़े आसानी से उन्होंने कवर कर लिए। बेटा तो ट्रैकिंग करते करते बोल रहा था, पापा ये तो बड़ा आसान है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। उसके पिताजी ने इसे कहा, हाँ शुरू शुरू में तो हर चीज़ में हमें मज़ा आता है, शुरू शुरू में हर काम करने में हमें मज़ा आता है, चाहे वो कुछ हो, लेकिन आगे पता चलेगा। और बिल्कुल शुरू शुरू में हमें हर चीज़ें करने में मज़े आती हैं, नहीं शुरू शुरू में हमें प्यार करने में भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बाद में भुगतना पड़ता है। जैसे 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 मंजिलें बढ़ती हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है हर चीज़ में, पढ़ाई में भी, खेल में भी, लाइफ में भी। तो वैसे ही उसके साथ सेम चीज़ हो रही थी। जंगल चट्टी तो पार बहुत आसानी से हो गई। जंगल चट्टी से भीम पाली का सफ़र 4 किलोमीटर था, और अब जो था पहाड़ों में सफ़र शुरू होने वाला था। तो 4 किलोमीटर कहना बहुत आसान था, लेकिन जैसे जैसे वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था, ऑक्सीजन घट रहा था, तो वो 4 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर के बराबर हुआ। तो अब जो है धीरे धीरे थकान होने लगी उसे। उसने कहा कि पापा उससे नहीं हो पाएगा, आराम कर ले थोड़ी देर। तो बोलता है यहाँ पे आराम करने का कोई कहीं ऑप्शन नहीं है, जबकि ऑप्शन तो था। भीमपाली और लिंचौली में जो है, जंगल चट्टी में तो नहीं, लेकिन भीमपाली पहुँचते पहुँचते ये बहुत सारे हमें कैंप्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक नेस्ट की तरह थे, छोटे छोटे कैंप्स थे, और वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते थे अगर आप शाम तक नहीं पहुँच पाते तो। लेकिन शाम तो अभी तक हुए नहीं थे, अभी तो दिन के 1 ही बजे थे, क्योंकि 5 बजे वे लोग निकल चुके थे। तो भीमपाली पहुँचते पहुँचते थकान सही में तीनों को होने लगी उतनी तेज़ी से, और बज रहे थे दोपहर के 2। तो उन्होंने सोचा कि हम शाम पहुँच होते होते कि हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स हैं, तो उन्होंने वहाँ रेस्ट करने का निर्णय लिया। भीमपाली में छोटे छोटे नेस्ट थे, और वे सारे नेस्ट बुक थे पहले से, वहाँ पे लोग थे, कुछ लोग थे जो कि बीमार थे, बीमार हो चुके थे, कुछ लोग थे जिन्हें चोट लग चुकी थी, और कुछ लोग थे जो सही में सिर्फ आराम कर रहे थे। तो उसके पिताजी ने ढूंढने की कोशिश की कि कोई एक कैंप उन्हें मिले, कोई एक नेस्ट उन्हें मिले, लेकिन कोई भी ना मिला। एक सिख परिवार था जो कि जिसकी माँ आई थी उनके साथ ट्रैकिंग करने के लिए। उनकी माँ की हालत बहुत ख़राब थी, तो वे लोग उसी कैंप के अंदर गए, और उसका बेटा उसकी माँ जो थी, जो सिख परिवार था, उसका बेटा जो था, उसकी माँ जो बीमार थी, उसके पास गया और उनकी हालत देखी तो बहुत ख़राब थी, लेकिन उसके उसके सिख बेटे ने कहा कि मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन उनका सपना था कि वो एक बार चार धाम करे और केदारनाथ का सफ़र तो करे ही करे। तो जैसे उनकी हालत थी, किसी को नहीं लग रहा था कि वो उठ भी पाएंगे और चल भी पाएंगे। वो लड़का गया और उनका हाथ पकड़ा और कहा कि आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे और आपका सपना भी पूरा होगा। और अचानक से उन बुज़ुर्ग का आँख खुला और उन्होंने मुस्कुराया और कहा और सर हिलाया। सब लोग देख के बड़े खुश हुए कि उनकी माँ कॉन्शियस नहीं है, और वो खड़ी हुई और बोली कि मैं ठीक हूँ और मैं चल सकती हूँ। और लेकिन डिसाइड ये हुआ कि वे लोग नहीं निकलेंगे आज, कल सवेरे निकलेंगे। तो उस सिख परिवार ने कहा कि और इस परिवार से कहा कि आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हो ना कैंप। तो कंजस्टेड हुआ, लेकिन जैसे तैसे काम हो गए। तो रात भर हम वे लोग रेस्ट किए और उसने चुपके से, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने पूछा अपनी माँ से कि माँ आपको भी क्या, आपका भी कैसा कोई सपना था कि आप केदारनाथ आओ? तो कहा कि नहीं बेटा, मेरा कभी ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं था कि मैं केदारनाथ आऊँ, लेकिन तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा ख्वाहिश था, क्योंकि उनकी माँ का सपना था कि वो केदारनाथ के दर्शन करें, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो हाँ, ये बात तुम्हें कभी पापा बताएंगे नहीं, लेकिन ये उनकी माँ का सपना था, तुम्हारे पापा की माँ का, यानी कि दादी का सपना था तुम्हारे। सवेरा हुआ, सुबह हुई, और फिर अब भीमबल्ली से लिमचौरी 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग थी। और इस दफ़ा दिलचस्पी ये थी कि वो सिख परिवार भी इस बार उनके साथ था। बहुत अच्छा चल रहा था सफ़र और सब नए जोश के साथ थे, क्योंकि जब वो बुज़ुर्ग माता जी कर सकती थी, चल सकती थी, तो फिर वो क्यों नहीं। यही इसी स्पिरिट के साथ कि हम कर लेंगे, हम चढ़ जाएंगे, उन लोगों ने लिमचौली का डिस्टेंस पूरा किया। और उसके बाद वो लोग पहुँचे केदारनाथ बेस कैंपस। 4 किलोमीटर की दूरी फिर उन्होंने तय की, और इस दफ़ा जोश था। अब केदारनाथ बेस कैंपस से केदारनाथ टेंपल जो है वो 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी। तो बेस कैंपस में वो लोग फ्रेश हुए, थोड़ा आराम किया और अच्छा महसूस किया। उस लड़के के पैरों में चोट लगी थी कुनी वजह से, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। हर दफ़ा जब उसे दर्द होता था तो वो उस बुज़ुर्ग औरत की तरफ देखता था और मुस्कुराता था उन्हें देख के, और कहता था कि हम कर लेंगे, हमसे होगा, हम दर्शन करके रहेंगे। बेस कैंप से 1 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही, मतलब वो 1 किलोमीटर बेस कैंप से जितना आसान है 1 किलोमीटर उतना आसान था नहीं, बहुत मुश्किल था वो। लेकिन वो लोग वहाँ पहुँचे, और जो खूबसूरती जो नज़ारे उन्होंने वहाँ से देखे, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में, इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में। अद्भुत था वो दृश्य। और मेरी मानो तो सबको एक ना एक बार लाइफ में केदारनाथ जाना चाहिए, उस मेहनत से जाना चाहिए, किसी पालकी और पोनी पे बैठ के नहीं। पहुंचने के बाद उस बेटे के आंखों में आंसू थी, और उस बुजुर्ग माता के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई वो प्राइसलेस थी। वो गई अंदर, उन्होंने पूजा किया, दर्शन किया, उनके दर्शन हुए केदारनाथ के, और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश थी वो। और इस लड़के के पिताजी बड़े खुश थे, तो उसने पूछा अपने पापा से कि पापा आप खुश हो ना, आपको अच्छा लगा? तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा? बोलता है पापा मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं आपको कैसा लगा आप बताओ ना। बोलता है मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा, तुम क्यों ऐसे पूछ रहे हो इतना जोर दे के? कहा कि पापा मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, बस आप खुश तो हो ना। बोलता है हाँ। तो उसने कहा कि मैंने अच्छा तो किया ना पापा? हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा किया और वर्थ इट था, ये सफ़र बहुत लंबा हुआ। 2 दिनों के बाद वे लोग वापस घर आए और फ्लाइट से बहुत थकान हुई उन्हें, और वो सिख परिवार अब उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उनसे, वो लोग कांटेक्ट में थे, और उस सिख परिवार ने उन्हें इनविटेशन दिया था कि जब भी छुट्टी हो तो आप आओ हमारे यहाँ जलंधर, हमसे मिलो, हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगता है जब आपकी दोस्ती हो जाए, एक ही मंजिल को जब आप चेस कर रहे हो तब। तो दिस बीइंग सेड, एक जर्नी ख़त्म हो गई और बहुत लंबी जर्नी थी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आप लोगों से मिलूंगा, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, दिस इज़ प्रहर्ष, पीस आउट गाइस।